ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो हम सबका पिता पालनहार है, उसे कब कहां कैसे कौन सी सेवा करानी है, यह कला केवल शिव बाबा के पास है। बाबा भी जौहरी के रूप में अपने हर रतन की शुद्धता और क्षमताओं को जानते हैं। इसी श्रृंखला में बाबा ने क्षमताओं की धनी सरस्वती रूपा, प्रतिभा संपन्न, अंगत समान, अचल अडोल, शुक्ल पक्ष की शीतलता भरी चांदनी लिए आदरणीय शुक्ला दीदी जी को यज्ञ सेवा निमित्त निर्धारित किया। हम आदरणीय दीदी जी का सहृदय स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी जी का जन्म पंजाब के उस शहर में हुआ जहां प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास संरक्षित है, जिसे हम अमृतसर नाम से जानते हैं। बाल्यकाल से ही आपको भगवान की पार की दृष्टि आप पर थी। बाबा को रोम रोम में समाकर आप सन 1960 से स्वर्णिम संसार को इस धरा पर लाने के लिए सतत सेवा कर रही हैं। आपने अर्धशतकीय समर्पित ईश्वरीय जीवन में 60 से भी अधिक सेवा केंद्र व उप सेवा केंद्रों द्वारा सेवा की वृद्धि करके अपनी क्षमता का परिचय दिया और बाबा को दिया अपना वायदा पूरा करके अनवरत आगे बढ़ते रहने की अपनी दृढ़ता को यज्ञ के समक्ष प्रस्तुत किया। आपकी इस उपलब्धि को देख हम कह सकते हैं, जब नैनों में नूर हो भगवान का, हाथों में हाथ हो भगवान का, शक्ति जोली आपने भगवान से, सफलता बढ़ती गई बढ़ती गई। वर्तमान में आप हरिनगर एवं संबंधित सेवा केंद्रों एवं मिनी मधुबन ओआरसी की डायरेक्टर हैं, साथ ही सिक्योरिटी विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसी तपस्वी मूर्त दीदी जी से आज हम अमृतवाणी सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। हम और आप सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। क्यों पद्मा पदम भाग्यशाली है? जिसको संसार ढूंढता है वो हमारा बाप, टीचर और सदगुरु बन करके हम सबकी पालना कर रहा है, ऐसे है ना? तो पद्मा पदम भाग्यशाली तो है ही। आज आप सबको देखकर बहुत हर्ष भी हो रहा है और साथ साथ प्राण प्यारे बाप दादा के मधुर महावाद की याद आ रही है कि बाबा कहा करते थे आगे चल करके बहुत बहुत भीड़ लगा करेगी। तो आज हम देखते हैं कि अपना ये जो पाक धाम है शांतिवन, वो चारों तरफ आत्माओं से भरपूर है, ठीक है ना? तो हम सब बच्चे जो हैं, हमारे अंदर बाबा ने आध्यात्मिक जागृति भी पैदा की और साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई है संसार, और साथ साथ हम सब के सामने एक लक्ष्य दिया है। लक्ष्य के अनुकूल हम अपने जीवन को कैसे बनाएं, उसकी सारी विधि निधि बताई है। अब आप देखेंगे उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस रेस में पहुंचने के लिए हम सब प्यादे, घुड़सवार, महारथी दौड़ रहे हैं, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाबा ने हम सब के अंदर आदि अनादि स्मृतियां भी जागृत किया। और साथ साथ हम सबको ये आदेश दिया कि बच्चे सदा ऊंच स्मृतियों के अंदर विचरण करते रहो, कर्म करते रहो और साथ साथ उसके अनुकूल अपने आप को चलाते भी रहो। आप और हम साक्षी होकर के देखते हैं कि जो बच्चे बाबा की उस श्रीमत का पालन करके अपने अंदर उस ऊंच स्मृतियों को जागृत करते हैं और जागृत करके चल रहे हैं, उनका जीवन सदा खुश नुमा दिखाई देता है। हमारे सामने बाबा ने ये भी लक्ष्य रखा कि तुम सदा खुश रहो, खुशी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अब उस खजाने को कायम करने के लिए उस सदा खुशी में रहे और खुशियां हम बांटते रहे, उसके लिए बाबा ने हमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के महावाक्यों से सींचा है। आप देखेंगे जैसे माली होता है अपने बगीचे को कैसे सींचता है और दिल से सींचता है तो वो उसके फूल बहुत सुंदर तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही इस बगीचे के अंदर हम सब सुंदर फूल के रूप में बाबा के समक्ष हैं। अब बाबा ने हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें ऐसे दी है जो हम इस दौर के अंदर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, उसके लिए आज बाबा हमारे सामने कहता है कि बच्चे लेटेस्ट वाणी अगर आप लोगों ने सुनी होगी अच्छी तरह से, उस पर अच्छी प्रकार से मनन चिंतन किया होगा, तो बाबा के लास्ट वहां वाक्य सीजन के व्यर्थ मुक्त बनो, निर्विघ्न बनो। अब जब मैं ये शब्द पढ़ती हूँ तो मेरा बहुत विचार चलता है कि बाबा कहता है व्यर्थ मुक्त बनो और निर्विघ्न बनो और निर्विघ्न बनाओ, खुद भी निर्विघ्न बनो, साथियों को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, समाज को निर्विघ्न बनाओ। तो इन महावाक्यों को जब मैं पढ़ती हूँ तो विचार चलता है कि हम व्यर्थ से मुक्त कैसे बनेंगे। उसके लिए भी बाबा ने हम बच्चों को आप देखेंगे कि ढाल दी है, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए एक ढाल मिली है जो कुछ तीन चार पहले की वाणियों के अंदर बाबा ने एक और बात बहुत सुंदर बताई कि तुम व्यर्थ से मुक्त परिस्थितियों में रहते हुए उन परिस्थितियों को देखते हुए और उन परिस्थितियों के अंदर चलते हुए एक ढाल अपने पास रखो, वो है वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा पार्ट, वाह अन्य आत्माओं का पार्ट। आप देखेंगे जब इस बात को हम अपने जीवन के अंदर एक ढाल के रूप में ले लेते हैं तो क्या होता है, उसे हमारे को परिस्थितियों में रहते हुए हम खुश रहे, अन्य आत्माओं को खुशियां प्रदान करते रहे, एक सहारा एक आधार मिल जाता है। अगर आप लोगों ने भी इसका जीवन के अंदर अनुभव किया होगा, जैसे युद्ध स्थल पर खड़ा हुआ योद्धा हमेशा यही चाहता है कि मैं विजयी बनूं और विजयी बनने के लिए वो अपने आप को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रखता है। आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान जब देखा होगा तो उसमें भी एक कवच पहनते और उसके साथ एक ढाल पकड़ करके तलवार पकड़ करके निकलते और दुश्मनों के साथ लड़ाई करते तो उसमें कई बार दुश्मन को वो हरा देते। इसी प्रकार हम लोग भी रूहानी योद्धा है। अब रूहानी योद्धाओं के पास ढाल भी है, तलवार भी है, कवच भी है, स्वदर्शन चक्र जो सबसे बड़ा चक्र व्यूह से निकालने वाला, परिस्थितियों से दूर करने वाला और वाह वाह के गुण गाने वाला स्वदर्शन चक्र जो हमें मिला है, उसका अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा स्वदर्शन चक्र जैसे जैसे चलेगा और उसका हम जब अपने जीवन की धारणाएं बनाते जाएंगे और उसके अनुकूल अपने आप को चलाते जाएंगे तो एक इनर पावर हमारे अंदर ऐसी पैदा हो जाएगी जो हम हर परिस्थिति को बहुत खुशी खुशी पास कर सकते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ हमारा जीवन समुन्दर की न्यायी है। आप देखेंगे समुन्दर को समुन्दर क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समुन्दर की लहरों में लहरों को देखना, उस लहरों में लहराते हुए समुन्दर की लहरों को देखते हुए बहुत खुशी भी होती है और कई लोग खास उस लहरों को देखने के लिए जाते हैं और उन लहरों को देखते देखते बहुत खुश होते हैं और कई लोग जो है लहरों के पास जाते हैं, लहरों के नजदीक जाते हैं तो डरते हैं, कहते हैं कि कहीं समुन्दर की लहर इतनी तेज ना उठे जो हमें बहा करके ले जाएगी, तो उसमें उनको डर भी लगता, फिर भी उसका आनंद लेने के लिए वो समुन्दर के किनारे जाया ही करते हैं। एक सीन मेरे को याद आता है कि एक माता अपने बच्चे को लेकर समुन्दर के किनारे पर खड़ी थी और आनंद ले रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उसको, परंतु क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद एक लहर उठी और वो लहर उस बच्चे को अपने साथ ले गई। अब जब वो बच्चे को अपने साथ लहर ले गई, बहा करके समुन्दर में ले गई, तो माता बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, हे भगवान जी मेरा, हे समुन्दर देवता मेरा एक ही बेटा है, अरे तू मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरा बेटा मेरा सहारा भी ये है, मेरे जीवन का आधार भी यही है। बहुत रोने लगी, बहुत भगवान के आगे समुन्दर देवता के आगे रिक्वेस्ट करने लगी, पर फिर दूसरी लहर आई, बच्चा लहर बाहर आ गया और उसको देख करके वो बहुत खुश भी होने लगी और भगवान का धन्यवाद भी करने लगी। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद उसका ध्यान अपने बच्चे के पांव की तरफ चला गया, तो क्या देखती है, एक जो जूता था वो समुन्दर के अंदर चला गया था और एक जूता बच्चे के पैर में था। फिर रोने लगी वो, हे भगवान जी मेरा बच्चे का वो बहुत महंगा जूता है, वो थोड़ा सा फिर लहर के अंदर वापस आ जाए तो आप इस बच्चे का जूता वापस कर दीजिए। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे आज संसार की हालत, हम सब की भी हालत, हम भले ही उसमें से बहुत उठ रहे हैं, उभर रहे हैं, परंतु कई बार ऐसी छोटी मोटी जब परिस्थितियां आती है तो क्या करते हैं हम लोग, बहुत बहुत हलचल में आ जाते हैं। उस समय हमें ये भूल जाता है कि हम कौन हैं, किसके हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें करना क्या है। बाबा हमें इतनी अच्छी अच्छी लक्ष्य, हमारी इतनी ऊंची ऊंची स्मृतियां हम बच्चों के अंदर जागृत करता है। सबसे पहली स्मृति तो हम बच्चों को ये बताता है कि तुम हो विश्व के परिवर्तक। अब हम विश्व के परिवर्तक हैं, राजयोग सिखाते हैं, तो हमें ये बात अपने आप से सदा पूछनी चाहिए कि क्या हमारा अपने ऊपर राज्य है, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य है, अपने आप अपने संकल्पों के ऊपर राज्य है। क्योंकि जब तक हम हमारा अपने स्व के ऊपर राज्य नहीं हुआ तो हम कहें कि हमारे अंदर दूसरों के द्वारा कोई भी परिस्थिति आती है और हम एकदम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें नियंत्रण निरंतर इस बात का अभ्यास करना होगा कि हम राजयोगी है, राज ऋषि है और विश्व के परिवर्तक है। तो पहले मुझे अपने आप का पूर्ण रीति से परिवर्तन करना है, अपने पास कोई भी अपना पुराना संस्कार, पुराना विचार, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुराना कर्म बंधन, क्योंकि जब तक हमारे पास ये पुरानी बातें हैं, हमारा पुराना कर्म बंधन जुड़ा हुआ है, तो जहाँ कर्म बंधन जुड़ा होगा और उनके द्वारा जो भी परिस्थितियां पैदा होगी उसमें हम मुक्त नहीं रह सकते, व्यर्थ से मुक्त नहीं हो सकते। तो हमें इस बात के ऊपर विशेष विशेष अटेंशन देना ही होगा, तब अपनी चौपड़ी को साफ करना होगा, अपनी पोतामेल को ठीक बनाना होगा और अपनी मनोस्थिति के अंदर सत्व प्रधानता लानी होगी। क्योंकि जब तक हमारे में सत्व प्रधानता नहीं है, जब तक हमारे में शीतलता नहीं है, तब तक हम दूसरों की गर्मी हमारे पास ना आए हो नहीं सकता है। योगी के लिए हमेशा कहा जाता है, योगी बड़े परमासी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देके अपना रंग। तो क्या हम ऐसे परमार्थ को पहुंचे हुए योगी हैं? ये कुछ क्वेश्चन हमें व्यर्थ से मुक्त होने के लिए, वाह वाह के गुण गाने के लिए और निर्विघ्न बनने के लिए, ये जो कुछ क्वेश्चंस है उनको, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है। तभी हम एक ऐसी लय संसार के अंदर फैला सकते हैं कि हमें व्यर्थ से मुक्त होना है, संसार को भी व्यर्थ बातों से मुक्त कराना है। पहले अपने अंदर कहते हैं मुक्ति मोर्चा स्थापन कीजिए, अपने आप को मुक्त करें हम। क्योंकि जब तक अपने आप को हमने मुक्त नहीं किया इन छोटी मोटी बातों से, आप देखेंगे, हम देखते हैं कई भाई बहनों के मनोस्थिति को देखते हैं, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने आप को किनारे कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने आप को होपलेस कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में कह देते हैं हमारे बस की बातें नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। अरे कहां तू महान योद्धा, कहां तू विश्व का परिवर्तक, कहां तू सत्व प्रधान प्रकृति और पुरुष को सत्व प्रधान बनाने वाला, और आज इन छोटी छोटी बातों में अगर तुम्हारा फ्यूज उड़ जाता है तो दूसरों को लाइट कहां दे सकोगे? तुम नहीं दे सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरों को लाइट दे, दूसरों को मार्ग प्रदर्शन दे, परंतु पहले खुद हम एक ऐसे मार्ग में, जो बाबा ने हमारे सामने एक ऐसा सच्चा मार्ग, जीवन मुक्ति का मार्ग हमें दिखाया है, पहले हम अपने आप को मुक्त करें, विमुक्त करें, तब जीवन मुक्त बन सकते हैं। तो उसके लिए ये आप सब बहुत अपने भाग्य को सराहिए, जो यज्ञ में बार बार, साल में दो बार, तीन बार, चार बार बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? नहीं तो वाणी तो घर बैठे भी आप सुन लेते हैं, वाणी सेंटर पर भी जाके सुन लेते हैं, सेंटरों पर भी भट्टियां होती हैं, परंतु फिर भी आप सबको बार 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 यहाँ पर बुलाने का अभिप्राय क्या है? बार बार बुलाने का अभिप्राय ये है कि आप जब इस महान यज्ञ के अंदर आएंगे, महान जो इस यज्ञ के कई रक्षक है, पालक है, उन सब के जीवन को देखेंगे, उन सब की धारणाओं को देखेंगे, उनके विचार सुनेंगे, तो क्या होगा? संगठन में आने से आपको अनेक प्रकार की बहुत रोशनी मिलेगी, मार्ग प्रदर्शन मिलेगी, गाइडलाइन मिलेगी उससे, और साथ साथ जब संगठन में भट्टियां होती है, क्लासेस होती है, तो बहुत सारी ऐसी बातें मिलती है जिसे हमारे अंदर के छोटे मोटे जो ड्राफ्ट बैक है, जो हमें एक स्थान पर किनारे में खड़ा कर देते हैं, उससे हम उबरने लगते हैं। फिर जीवन के अंदर उमंग आता है, उत्साह आता है, हिम्मत आती है, और फिर लक्ष्य याद आता है कि मैं रूहानी योद्धा का लक्ष्य है, मुझे संपूर्ण कर्मातीत विकर्मातीत बनना है, प्रकृति जीत बनना है। क्या मेरा एक सवाल है, क्या हम अपने आप को कह सकते हैं हम प्रकृति जीत हैं? ये प्रकृति का बना हुआ पुतला इतना शांत और शीतल हो गया है, जिसके लिए गायन है प्रकृति देवताओं की दासी है ना? तो दासी आज दासी है या हम उसके दास बन जाते हैं, क्या है ना? क्योंकि जब तक हम बार बार दिन के अंदर कई बार अपने आप को अंतर्मुखता की गुफा में ले जाकर अपनी चेहरे और चलन और अपनी मनस्थिति का दर्शन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज हम देखते हैं कईयों के जीवन में वो दिव्य स्वरूप दिखाई देता है, और हम संसार को चैलेंज करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ आत्मा अगर देख रही है तो हम भगवान के पुत्रों को देखो, तो भगवान के पुत्र भगवान की शक्ल नजर आती है हमारे पुत्र, हम जो भी पुत्र हैं उनके, हम सब पुत्र हैं ना, उत्तराधिकारी है ना उसके, तो उत्तराधिकारियों के अंदर वो शक्ल नजर आती है भगवान की, वो सत्प्रधानता, वो दिव्यता, वो सत्यता, वो रूहानियत, वो आंखों की चमक, वो चेहरा, वो चलन, वो व्यवहार, वो कर्म, सब कुछ दिखाई पड़ता है। जो ऊंच होगा, जो महान होगा, जो एक कमांडर होगा, उसकी झलक और फलक वैसे ही दिखाई देंगे। तो आप अपने आप को कमांडर बनाइए, कमांड करना सीखिए, क्योंकि जब तक अपने अंदर अपने आप को कमांड करना नहीं आया तब तक आप दूसरे के ऊपर कमांड नहीं कर सकते, दूसरों को अपनी राह पर नहीं चला सकते। उसके लिए हमें ये लक्ष्य रखना है कि जो बाबा ने कहा है, व्यर्थ मुक्त बनो, निर्विघ्न बनो, है? क्योंकि विघ्न तो हमारे अपने शरीर के द्वारा भी आ सकते हैं, विघ्न अनेक आत्माओं के द्वारा भी आ सकते हैं, विघ्न जो है जन्म जमांतर के जो हमारे हिसाब किताब है उनके लिए भी आ सकते हैं, विघ्न हमने अनेक अनेक ऐसी आत्माओं के साथ ऐसे कर्जे लेन देन कर रखे हैं उनकी तरफ से भी आ सकते हैं, परंतु उन सब के बीच में रहते हुए हमें निर्विघ्न बनना है। पहले मेरे आंतरिक संकल्पों के अंदर ये बात परिपक्व रूप में रहनी चाहिए, अगर मेरे आंतरिक संकल्पों में ये बात निश्चय रूप में परिपक्व अवस्था में नहीं रहेगी कि मुझे विघ्न विनाशक बनना है, तो पहले दुनिया में आप देखिए विघ्न विनाशक गणेश जी को कहते हैं ना, गणेश जी को विघ्न विनाशक, और उनको फिर साथ साथ क्या कहा जाता है, वो बुद्धिवानों के बुद्धिवान है, समझा? तो ऐसे ही भगवान ने हमें ज्ञान का नेत्र देकर, सत्य की पहचान देकर के हमारी बुद्धि को रिफाइन तो कर दिया है, परंतु वो रिफाइननेस हमारे अंदर कितनी आई है और कितना हम उसको यूज करके अपने आप को इतना श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाया है, वो हमें अपने आप से सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि अभी सवाल जीवन के अंदर खत्म नहीं हुए, बेशक हम वापसी यात्रा में हैं, बहुत सारे सवाल है हमारे सामने जिसको हम सबको सॉल्व करना है, और जब तक हम अपने भीतर से उसको सॉल्व नहीं करेंगे, सब सवालों से ऊपर अपने आप को नहीं उठाएंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, अपने आप से संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक समाज भी हमसे संतुष्ट नहीं हो सकता, और समाज संतुष्ट नहीं तो भगवान भी संतुष्ट नहीं हो सकता, ये आप 101% जान लीजिए। तो इसलिए मेरा आप सब भाई बहनों से यही हार्दिक अनुरोध है, दिल से अनुरोध है कि आप इस महान यज्ञ में आए हो तो कुछ लक्ष्य लेकर के आए हो, सिर्फ घूमने फिरने नहीं आए हो, क्योंकि मैंने देखा, मैं अगर कोई माइंड नहीं करे तो साक्षी होकर के मैं कई बार देखती हूँ कि जब संगठन में सब भाई बहन मिलते हैं तो थोड़ा लक्ष्य घूमने फिरने का भी होता है, थोड़ा लक्ष्य आपस में मिलने जुलने का भी होता है, बहुत कम पुरुषार्थियों के अंदर ये लक्ष्य होता है कि मैं यहाँ भरपूर होने के लिए आया हूँ, यज्ञ में आया हूँ, संपन्न होने के लिए आया हूँ, और जो मेरी कमी कमजोरियां हैं उसको यज्ञ के अंदर स्वाहा 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 करने के लिए आया हूँ, है ना? तो अभी 5-6 दिन आप सब यहाँ हैं, दुनिया का कोई गोरख धंधा आपके पास नहीं है, सब अपने अपने काम काजों से छुट्टी लेकर के आए हैं, तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि कि थोड़ा स्व परिवर्तन की धारा को, स्व परिवर्तन की लहर को अपने अंदर पैदा करिए, और जो ईश्वरीय धाराएं हमारे ऊपर पै रही है, आप देखेंगे प्राण बाप दादा हमारे अंदर ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, दुआओं की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अमृत प्रवाहित कर रहे हैं, और उस अमृत रूपी धारा, जैसे गंगा की धारा के पास चले जाओ तो क्या होता है, ऐसे ही वो अमृत रूपी धारा जो बह रही है बाबा की हमारे ऊपर, उसके नीचे बैठ जाओ, है ना, तो नीचे बैठे रहेंगे और उन धाराओं को बांध के रखेंगे तो कुछ बन सकेंगे। अगर उन धाराएं तो बह रही है, वो तो निरंतर बहेगी, धारा एक तरफ बह रही है, हमारी बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, तीसरी तरफ जा रही है, चौथी तरफ जा रही है, पांचवी तरफ जा रही है, तो क्या होगा, क्या होगा, जो लक्ष्य लेकर के हम आए वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, संपन्न नहीं बन पाएंगे। संपन्न सिर्फ कहने से संपन्न नहीं बनना, कर्मातीत कहने से कर्मातीत नहीं बनना, विकर्माजीत कहने से नहीं बनना, सत्व प्रधान कहने से नहीं बनना, प्रैक्टिकल अपने जीवन को उसके अनुकूल चलाने से ही हम बन सकते हैं। और जितना जितना हमारी आंतरिक स्थिति, हमारा मनोबल स्ट्रांग होता जाएगा, उतना उतना हम, जो बाबा कहते हैं, प्राण बाप दादा बार बार कहते हैं कि मुक्त बन जाओ, सब किनारे सारे आधार सारा कुछ सबके बीच में रहते हुए तुम न्यारे और प्यारे बन जाओ, है ना, तो वो तभी बन सकोगे जब भीतर चले जाओगे। भीतर जाना भी संसार के अंदर दो प्रकार का होता है। इस पर मुझे एक प्रसंग याद आता है, एक लक्कर हारा था, वो बेचारा बहुत मेहनत करता था, और मेहनत करता थोड़ी सी लकड़ियां काट पाता था सारा दिन के अंदर, और उसी से ही अपना बच्चों के लिए भोजन के लिए पैसा कमा सकता था। तो एक साधु इस बात को रोज देखता और उसको एक दिन बड़ा तरस आया उसके ऊपर, और कहने लगा, ये लक्कर आ रहे, तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, मुझे तुम पर बहुत रहम आता है, तो मैं ये चाहता हूँ तुम थोड़ा भीतर चले जाओ। अब उसने सोचा कि ये साधु महाराज खास आया मेरे को कहने के लिए भीतर चले जाओ, तो वो जंगल के थोड़ा भीतर चला गया। तो भीतर जब गया तो उसको क्या मिला, चंदन के पेड़ मिले, उसको उसने काटा और जा करके बेचा, उसको पैसा, काफी सारा पैसा मिल गया, जिससे वो अपने बच्चों की जीविका का पालन करने लगा। फिर थोड़े दिन के बाद फिर वो साधु के पास गया, फिर उन्होंने कहा और भीतर चले जाओ, तो उसको क्या मिला होगा, चांदी मिली। फिर और भीतर गया, सोना मिला। फिर एक दिन वो सोचता है कि मैं तो बड़ा सौकार बन गया, ये साधु क्यों वृक्ष के नीचे बैठा है। वो साधु के पास जाकर के बोलता है, महाराज मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। वो कहते है, क्या, कहने लगा कि आप मुझे तो रोज कहते हो भीतर चले जाओ, भीतर चले जाओ, और मैंने भीतर जाकर के बहुत कुछ पाया है, पर आप क्यों इस वृक्ष की छाया के नीचे बैठे रहते हो। तो उन्होंने कहा कि भीतर जाना दो प्रकार का होता है, एक है स्थूल भौतिक पदार्थों के लिए भीतर जाना, एक है सूक्ष्म शक्तियों के लिए भीतर जाना। तो मैं जो तपस्या करता हूं किस लिए, सदा काल के लिए मेरे पास इतनी अखुट शक्तियां जीवन के अंदर आ जाए जो सदा मेरा जीवन जीवन मुक्त हो जाए। तो मेरे भाई बहनों, हम सब चाहते हैं कि हम बहुत कुछ बने, और बाबा भी चाहता है हम सबको बहुत कुछ बनाना, परंतु थोड़ा भीतर जाकर के देखो, जितना भीतर चले जाओगे अथाह शक्ति है हम सबके पास जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, और जितना जितना जो जा रहा है उसके जीवन सशक्त बनता जा रहा है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी, प्राण बाप दादा रोज रोज हम बच्चों को यही वार्निंग देते रहते हैं, भीतर जाना सीखो। तो जितना भीतर चले जाओगे, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठेंगे और श्रीमत का पूर्ण रीति से पालन करेंगे, उतना जीवन श्रेष्ठ संपन्न सुखदायी और जीवन मुक्त के व्यर्थ से मुक्त, विघ्नों से मुक्त और निश्चिंत और संतुष्ट स्थिति के दर्शन आप अपने आप में करेंगे। ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है।